الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات. ہماری گفتگو آج ہمارے اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، اور دو آیتیں سورہ سجدہ کی، آیت نمبر 23 اور 24، کہ جو سرنامہ کلام کے حوالے سے جن کی ہم نے تلاوت کی، اور یہ آیتیں در حقیقت ہمیں امامت کی حقیقت اور ان ہستیوں کے بارے میں معرفت عطا کرتی ہیں کہ جن کو خدا نے بطور ائمہ انسانیت میں قائم کیا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بات شروع ہو رہی ہے کتاب کے دیے جانے سے، کہ خدا کی طرف سے کتاب دی گئی، اور کتاب دی جانے کا نتیجہ یہ ہے، یا اس کا خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ تم لقاء پروردگار کے حوالے سے کسی شک میں نہ رہنا، اور کتاب تمہارے لیے باعث ہدایت بنے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، کہ ہم نے کتاب کو کس لیے قرار دیا، کس لیے دیا؟ کہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے والے بن جاؤ. اور پھر اس کے بعد ہم نے ان میں ائمہ قرار دیے، اور ائمہ قرار دیے جانے کی وجہ کیا تھی، یعنی اماموں کو کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو یعنی اس سے ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ یہ آیت حقیقتاً حبل اللہ کو جمع کر رہی ہے. حبل اللہ، جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہمیں پتہ ہے، آیت نمبر 102، کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی. تو اللہ کی رسی حقیقتاً کتاب اور امام، ان دو سے مل کر اللہ کی رسی تشکیل پاتی ہے. اور کتاب کا مقصد کیا بیان ہو رہا ہے؟ کہ لقاء رب کا یقین ہو جائے اور ہدایت، یعنی رستہ رہنمائی، واضح ہو جائے. اور امام کی پیروی کرنے کے لیے یا امام کے پیچھے چلنے کے لیے کیا چیزیں ہم کو فراہم کرنی پڑیں گی، کون سی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی؟ ان میں سے پہلی صفت ہے صبر، اور دوسری اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں، یقین. तो ये दो सिफात होंगी तो हम हकीकतन इमाम का फायदा उठा सकेंगे। और अगर हम वाकयन किताब खुदा से इस्तेफादा करेंगे तो हम किस जगह तक पहुंचेंगे कि हमें अल्लाह की मुलाकात का यकीन होगा और हम हिदायत हासिल करने वाले बनेंगे। तो इस मेन टॉपिक को जहन में रखिएगा। कल मैंने इमामत के हवाले से आपके सामने बयान किया था कि इमामत कोई अलग से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि इमामत जो है वो नबुव्वत और रिसालत का कंटिन्यूएशन, और ये तीनों के तीनों मिलकर, नबुव्वत और रिसालत और इमामत, ये तीनों मिलकर निजाम विलायत को जन्म देते हैं, क्रिएट करते हैं। और निजाम विलायत का मकसद क्या होता है कि ये वो सिस्टम है जो इंसानियत को खुदा का तकर्रुब हासिल करने के लायक और काबिल बनाता है। ये निजाम विलायत का पर्पस है कि खुदा ने इस निजाम विलायत को जब कायम किया, मासूम हस्तियों को उसका जिम्मेदार बनाया, तो इस निजाम का मेन पर्पस क्या है कि इंसान और इंसानियत खुदा के कुर्बत हासिल करने के काबिल हो जाए, उनको वो रास्ता मिल जाए, रास्ता समझ में आ जाए, उसकी गाइडेंस फराहम हो जाए, चलने के तरीके पता चल जाए, एंड सो ऑन। तो उसके विलायत के निजाम के कितने पिलर्स हैं? नबुवत, रिसालत, इमामत। और नबुवत और रिसालत का काम खत्म हो चुका, लेकिन इमामत, जैसा हमने कल आपको बताया था कि इमामत शरीयत के बातिन को रोशन करने का नाम है, इमामत शरीयत की हकीकत से इंसानों को रोशनास कराने का नाम है। तो ये ता कयामत ये चीज बाकी रहेगी, ठीक है? यानी कि एक लॉजिकल हमारे सामने ये बात, हमें इसमें कोई वो नहीं है, जैसे लड़ने की बात नहीं है, जैसे एक शख्स कहे कि नहीं आप ये कह रहे हैं, बल्कि एक लॉजिकल सी बात समझ में आती है कि अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी, नई शरीयत नहीं आएगी, इसका मतलब है रिसालत तमाम हो गई। अब कोई नई खबर नहीं आएगी गैब के बारे में, यानी तौहीद और आखिरत के अलावा नबुवत तमाम हो गई। लेकिन जो नबुवत और रिसालत या शरीयत हमको अता की गई है, उसमें तरक्की के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। उसके बातिन में दाखिल होना, उसके असरार को खोलना, उसकी राहों में तरक्की करना और बुलंद होना, ये चीज कभी बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि राह इमामत हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि ये इमाम का काम है। ये इमाम का काम है कि नबुवत और रिसालत की हकीकत और उसके बातिन तक इंसानों को ले जाए और उस रास्ते पर चलने में मदद दें। तो इस बात को जहन में रखिएगा। अच्छा, अब हम आज की हद तक, यानी अब आज से अपनी गुफ्तगू को एक मंजिल और आगे बढ़ाते हुए, कि जो भी इमाम बरहक है, यानी कि जिसको खुदा ने इमाम बनाया है, ठीक है ना? अब आप इस बात को समझ गए ना कि इमामत भी नबुव्वत और रिसालत के तरीके से एक खुदाई ओहदे का नाम है। ये खाली किसी लीडरशिप का नाम नहीं है, लीडरशिप इमामत नहीं है, अगरचे के लुगत में या लिटरल मीनिंग में लीडरशिप को इमामत कहते हैं, और इसी वजह से कोई शख्स प्रेयर को लीड करे या जलसे जुलूस को लीड करे वो उसका इमाम हो जाता है। लेकिन जिस सेंस में कुरान करीम इमामत को रोशनास करा रहा है, ये इस आयत में जिन लोगों को आयम्मा करार दिया जा रहा है, ये वो वाले इमाम नहीं है, बल्कि ये वो इमाम हैं कि जिन्हें खुदा ने मुंतखब किया है ताकि इंसानियत को उसके आला तरीन मकाम तक ले जाएं और उनको रहनुमाई करें। ये वो इमाम जो खुदा के मुंतखब करदा है। तो इस इमाम की जो पहली जिम्मेदारी है सोसाइटी में, इंसानी माशरे में, वो क्या है? और आज हम इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से उसको भी जरा अच्छे तरीके से भी देखेंगे। वो क्या है? अमर बिल मारूफ व नहीं अज मुनकर। कि ये जुमला आपने सुना होगा, और इंशाअल्लाह आज मैं ये जुमला इमाम अलैहिस्सलाम के खत का जुमला है जो आपने बतौर वसीयत मदीने से निकलते हुए रुखसत होते हुए तहरीर किया था कि बेशक मैं इसलिए बाहर निकल रहा हूं ताकि अपने जद की उम्मत में इस्लाह को तलाश करूं, और मेरा ये इरादा है कि मैं अमर बिल मारूफ करूं और नहीं अज मुनकर को बजा लाऊं। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने खुरूज के मकसद को बयान किया है, यानी मैं क्यों निकल रहा हूं, मैं अपने वतन को मदीने को क्यों तर्क कर रहा हूं, इसलिए कि अपने जद की उम्मत में इस्लाह करूं, उनके फसाद को दूर करूं, फितने खत्म करूं, और अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर करूं। यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर को इमाम अलैहिस्सलाम अपनी एक जिम्मेदारी और मामूरियत के तौर पर बयान कर रहे हैं, कि जिससे हमको ये बात समझ में आ रही है। और इंशाअल्लाह आज तो मैं पूरा ये समेट भी नहीं पाऊंगा इस टॉपिक को, तो कल इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की आयतों से और अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमलों से फिर इसको मैं और सप्लीमेंट करूंगा अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के मौजू को। आज हम इसकी बुनियादी तारीफ कुछ बता दें, उसके कुछ पहलुओं का जिक्र कर दें जो हमसे रिलेट करते हैं, हमसे रेलेवेंट हैं, और फिर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस खत को, के जो बहुत खूबसूरत हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए एक बेहतरीन मंशूर है, उसको आज हम स्टडी करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, अमर बिल मारूफ का जो मायना है, वैसे तो मैं बहुत दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है कि आज की गुफ्तगू में कई लोग ऐसे शरीक हों जिन्होंने वो सब बातें ना सुनी हों, तो एक बेसिक डेफिनेशन का बयान करना भी जरूरी है। वो क्या कि अमर का माना होता है ऑर्डर, हुक्म करना, ऑर्डर देना, नाफिज करना। जैसे अम्र इलाही यानी खुदा का हुक्म, ठीक है, अमर का मतलब होता है हुक्म, ऑर्डर। और इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो हुक्म या ऑर्डर जो अप्लाई ना हो, इम्प्लीमेंट ना हो, नाफिज ना हो, वो ऐसा ही है कि जैसा वो हुक्म दिया ही नहीं गया, यानी उस हुक्म के देने का कोई फायदा ही नहीं है कि जो नाफिज ना हो या इम्प्लीमेंट ना हो। तो इससे हमको एक बात खुद भी समझ में आ जाती है कि अमर जो है वो फकत ऑर्डर देना नहीं है, हुक्म के बारे में बताना नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना है। तो बिल मारूफ उसके साथ जो लाहा लग रहा है वो ये बता रहा है किस चीज को ऑर्डर देना, किसको नाफिज करना। मारूफ यानी नेकी, अच्छाई, खूबी। तो अमर बिल मारूफ यानी नेकी को नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना। नेकी को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा, यानी नेकियों वाले, अच्छाइयों वाले, खैर और बरकत वाले निजाम को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, अब एक बात खुद हमें, हमारी अकल वाजे तौर से हमको बताती है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है स्पेशली इस दुनिया की जिंदगी में, कि आप जब भी किसी चीज को और बेहतर और अच्छी चीज को इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने जाते हैं तो आपके पास दो किस्म की रुकावटें और रेजिस्टेंसेस फौरी तौर पर सामने आते हैं। एक तो ये कि जिस चीज को, यानी जिस चीज में, जिस डोमेन में आप अच्छाई को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें पहले से कुछ ना कुछ खराबियां मौजूद होंगी या होती हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप एक जमीन में बीज बोने जाते हैं, तो ये तकरीबन आपके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आप बस जमीन में जाएं और उसको खोदें और उस बीज डालें, ये नहीं पॉसिबल होता। यानी इवन अगर अच्छी जमीन भी है तो उसमें भी आपको उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, और प्रिपेयर करने का मतलब यह है कि उसमें से पहले उसकी खराबियां दूर करेंगे फिर बीज डालेंगे, ठीक। और दूसरी जो इसमें बात आती है, प्रॉब्लम आती है कि जब आप अच्छाई को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छाई एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जो रफ्ता 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 करके चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स अच्छाई वाले निजाम को काउंटर करते हैं, उसको काउंटर करने आ जाएंगे, उसकी मुखालिफत करेंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। तो उन तमाम का तोड़ और उसके मुकाबले में जो डिफेंस सिस्टम है वो भी आपको इन प्लेस रखना पड़ेगा। तो अब आप इस बात को देख रहे हैं कि जो अमर बिल मारूफ वाला जो निजाम है या अमर बिल मारूफ वाला जो काम है, ये कोई इतना सादा काम नहीं है। और इसीलिए इसके बाद जो फॉरेन नेक्स्ट जो चीज आई वो नहीं अज मुनकर, नहीं अमर का अपोजिट है, यानी अमर का मतलब ये है कि ऑर्डर करना, नहीं का मतलब ये है, ये नहीं नहीं है, इसमें आखिर में नून नहीं है, नून हटा दें आखिर का तो ये बन जाएगा नहीं। नहीं का मतलब यह है कि रोकना, रोकना, और रोकने में भी जिस तरीके से अमर में बाय फोर्स अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छाई को, इसी तरीके से नहीं में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बाय फोर्स बुराई को रोकेंगे और खत्म करेंगे, नहीं अज मुनकर। तो जो भी इमाम है खुदा की तरफ से, उस इमाम की पहली जिम्मेदारी क्या है? अमर बिल मारूफ व नहीं अज मुनकर, यानी अच्छाइयों को नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना और बुराइयों को निकाल बाहर करना। ठीक है, इस बात को, यानी यहां पर ये बात समझ में रहे कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक तकरीर कर रहा हूं, ये अमर बिल मारूफ का मे भी 5% होगा, क्योंकि अमर बिल मारूफ का एक छोटा सा पोर्शन है अच्छाई बताना, अच्छाई के बारे में बताना या बुराई से बाखबर करना, लेकिन ये अमर बिल मारूफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है। असल अमर बिल मारूफ क्या है कि इंसान अच्छाई इम्प्लीमेंट करे, बुराई खत्म करे, बुराई को जड़ से निकाले और उखाड़ के फेंक दे। अच्छा, यहां पर अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर का मायना क्या है, तो मैं यहां पर एक दो बातें और थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूं कि जिसकी वजह से ये काम काफी दिक्कत तलब होता है और ये जिहाद मांगता है। ठीक है, ये काम मुजाहिदे से, जिहाद के जरिए से ये पॉसिबल होता है, खाली बातों से तकरीरों से मुमकिन नहीं होता। अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है वो नफूस की तब्दीली है। अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर की रिक्वायरमेंट ये है कि नेकी लोगों के अंदर जज्ब हो जाए, लोग नेकी करें नहीं खाली, बल्कि लोग नेक बन जाएं। इन दो बातों में फर्क है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काफी नेकी के काम अंजाम देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे अंदर मेरा नफ्स, मेरी जात भी नेक हो, मेरी जात में भी सालेहियत हो। जैसा कि मैं आपको कल मिसालें दे रहा था ना उन लोगों की, कि जो लोग एक वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपके शियों में शुमार हो रहे थे, और वो उस वक्त के जब उन पर आजमाइश आई, सख्ती आई, वो सब के सब मिलकर जो है अहले बैत के दुश्मनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनके कातिलीन में शुमार हो रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता इंसान को, ये यहां पर हमारा काम तमाम नहीं होता, यहां पर अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के तकाजे पूरे नहीं हो जाते कि हम नेकी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं। बल्कि हमारे अंदर नेकी की सिफत पैदा हो जाए, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को, अपने अंसार को, अपने जो भी आपके करीबी रिश्तेदार और हरम थे, उनको कैसी तरबियत की थी उनकी, उनके नफूस को कैसा बना दिया था कि दुनिया की सख्त से सख्त तरीन हालत भी उनको तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, इसको कहते हैं, ये है अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर का फल, कि वो इमाम या वो हस्ती जो अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर अंजाम देता है, वो यानी जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, आप ने जो अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर अंजाम दिया है, तो किस तरीके से, अभी हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। तो इस बात को जहन में रखिए कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर का मायना यह है कि नेकी इंसानों के नफूस में जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और लोग नेकी और अच्छाई को बतौर एक वैल्यू के एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, यहां पर दो चार जुमले मैं चाह रहा था कि जिस माहौल के अंदर हम हैं, थोड़ा सा इस बात को भी आप लोगों के सामने मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि जाहिर है कि आप में से अक्सर हजरात बच्चों की तरबियत के हवाले से और नौजवानों के हवाले से परेशान रहते हैं और डिस्कस भी करते हैं और सवाल भी करते हैं, तो आपको इस बात को अच्छे तरीके से इंश्योर करना है कि आपका बच्चा एक नेक अमल अंजाम दे रहा है या नेकी को बतौर एक वैल्यू के अब्जॉर्ब कर रहा है। इस बात को, यानी कि ये अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर मुझे भी करना है, आपको भी करना है, हम में से हर वो शख्स के जो इमाम अलैहिस्सलाम का पैरोकार है और इमामत के रास्ते पर है, हर एक को अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर करना है। और इसी हवाले से मैंने इसकी तारीफ आपके सामने बयान कर दी कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर अच्छाई का बताना या बुराई से खबरदार करना नहीं है, बल्कि नेकी को एक वैल्यू के तौर पर, कदर के तौर पर एक अहमियत देकर माशरे में, इंसानों में नाफिज करना। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और ये मिसाल भी मैंने कई दफा दी है कि आप अगर किसी एक ऐसे मकाम पर हैं कि जहां की फजा में टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिफ्जाने सेहत के या हाइजीन के प्रिंसिपल्स का कितना ख्याल रखते हैं। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका जो माहौल है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसमें मिसाल के तौर पर करीब कोई फैक्ट्री है, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड और टॉक्सिक फ्यूम्स या कार्बन मोनोऑक्साइड और इस किस्म की गैसेस जो है ना, वो एमिट हो रही है, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, टॉक्सिक है, आप जितनी दिल चाहे वर्जिश कर लें, जितना दिल चाहे अच्छा खाना खा लें, लेकिन उन टॉक्सिक फ्यूम्स ने आपकी सेहत को खराब करना है। तो इसका मतलब यह होता है कि जब हम अपनी सेहत के हवाले से और रूहानी सेहत और दीनी सेहत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं, तो ये खाली इस पर डिपेंडेंट नहीं होती है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा, ये आपके उस माहौल और उस जर्फ पर भी डिपेंडेंट होती है जिसमें आप मौजूद हैं। अच्छा, अब जिस सोसाइटी में मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं, इस सोसाइटी का जो जर्फ है, हम सबको पता है कि ये दीनी नहीं है, और बल्कि इनके जितने भी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका पुश और पुल ये है कि इंसानों को दीन से दूर किया जाए और रखा जाए। यानी जैसे एक बात है, आप कभी भी गौर करें कि अगर दीनी लोगों में से, यानी चर्च का कोई वो है, ओहदेदार है या कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर अखबारात में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग जाती हैं। लेकिन चर्च से या दीनी लोगों से जो भी अच्छाइयां हो रही होती हैं उसकी कोई खबर भी नहीं आती। आप हमेशा इस बात को देखें कि ये पूरा जो एक माहौल बनता है कि माहौल और माशरे के अंदर तो जो मुफसदात और फसाद और गुमराह करने वाले और अखलाकियात को तबाह करने वाली चीजें हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ही हैं, लेकिन उसके बाद ये पूरे के पूरा सिस्टम जो है ना ये भी उस तरफ पुश करता है कि लोग दीन से दूर रहें, दूर रखे जाएं, दीन से करीब ना होने पाए। अच्छा, अब अगर आपका माहौल और आपका जर्फ इस तरीके का बना हुआ है, वो लोग यानी मिसाल के तौर पर मुझ जैसे लोग या ज्यादातर लोग जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जो एक इस्लामिक बैकग्राउंड से या माहौल में तरबियत पाकर आए हैं, आप लोग तो निस्बतन फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि आपकी रूट्स में, आपके फंडामेंटल्स में दीन के हवाले से कुछ चीजें मौजूद हैं। लेकिन वो बच्चे जो टोटली इसी माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टॉक्सिक फ्यूम्स जो है ना ये लीथल है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के उसूल के मुताबिक आपको अपने बच्चों की वैल्यूज जनरेशन पर बहुत ज्यादा तवज्जो करनी है और मेहनत करनी है। इस बात पर आपको मुतमईन होके नहीं बैठना है कि मैंने बच्चे को कह दिया कि नमाज पढ़ लो, मैंने बच्चे को कह दिया कि कलमा पढ़ लो, या बच्चियों को कह दिया कि हिजाब कर लो। दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बिल्कुल ऊपर ऊपर की बातें हैं। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर का जो कानून है वो हमें क्या बताता है कि नेकी को बतौर वैल्यू इस्टेब्लिश करना है, इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और बुराई को एक नहुसत के तौर पर जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, न कि उसके बारे में तकरीरें करना है और बताना है। और यही वो चीज है कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमको नजर आती है, और खास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मुजाहिद कि आपने इसी बात को इंश्योर किया था, इसी बात को यकीनी बनाया था कि माशरे में जो, यानी एक मिसाल मैं आपको दूं कि आप अगर 6 महीनों में देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलिमात को, देखें आपकी गुफ्तगू को, देखें आपको कितनी जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये जुमले मिलेंगे कि अहकामात वुजू क्या हैं, अहकामात नमाज क्या हैं, शक्तियात नमाज के अहकामात क्या हैं, किसी जगह पर यह बात मिलेगी आपको? इमाम ने कभी इस किस्म कोई किसी मौके पर यह बात की है कि किसी जगह पर आके लोगों से ये कहा है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो? बल्कि जो आयरनी है वो क्या है कि ये तमाम के तमाम काम तो पूरी फरावानी के साथ माशरे में हो रहे थे। मस्जिदें भरी हुई थीं, जिस हज से इमाम अलैहिस्सलाम 8 जिलहज को निकल आए, अपने हज को उम्रे से बदल के उस हज में हाजी बकसरत मौजूद थे, लोग रोजे रख रहे थे, इबादतें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम किस कौन सा अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर करने निकल गए? क्या ये बात काबिले गौर है या नहीं है कि जब अगर हमारी नजर में नेकी के जितने भी पिलर्स हैं या नेकी के जितने भी टिक बॉक्सेस हैं सब तो टिक थे, कौन सी चीज नहीं हो रही थी? क्या लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे थे, रोजे नहीं रख रहे थे, जकात नहीं दे रहे थे? सब सब हो रहा। तो फिर जो आप फरमा रहे हैं कि मैं अपने जद की उम्मत में तलब इस्लाह के लिए निकल रहा हूं, और इरादा रखता हूं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर करूं, तो इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहना चाहते? ये बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है। यानी नेकी की शक्ल मौजूद है, नेकी की सूरत मौजूद है, उसकी हकीकत जाया हो चुकी है। नमाज की हकीकत क्या है? बंदगी। नमाज की सूरत मौजूद है लेकिन उस नमाज में बंदगी का जौहर नहीं है। वो नमाज इंसानों को खुदा से करीब नहीं कर रही है। लोगों के यानी आप अगर, मैं कई दफा ये बात वैसे भी मैंने अर्ज की है कि आप अगर यजीद और मुआविया और इब्ने ज़ियाद के वो जो तारीख में जुमले नकल हुए हैं, अगर आप वो पढ़ें तो आप हैरान होंगे। हर तकरीर से पहले हम्द व सनाए खुदा है और कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और बड़ी गुफ्तगू है उन लोगों की
अच्छा
के जो फरजंद रसूल को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनकी हुरमत को जाया कर रहे हैं और वो कुरान की आयतें भी पढ़ रहे हैं। तो यहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर है ना, वो बहुत ज्यादा मानवीय पैदा कर लेता है और हमारे लिए एक बहुत अहम तरीन एक पैगाम हमारे सामने लेकर आता है कि दीन की हकीकत और है और दीन की जाहिरी शक्लो सूरत को सामने रखकर उसकी बिना पर फरेबकारी और है, उसकी बिना पर धोखा देना, उसकी बिना पर अपने सारे मतलब निकालना, ये एक और मामला है जो कि बनू मैया कर रहे थे और जो उन्होंने जाहिरन एक अरसे तक कामयाबी के साथ किया। अब मैं आपके सामने वो खत पढ़ देता हूं क्योंकि हमारे लिए जाहिर है कि हमारे मौजू के हवाले से भी कि हम अपनी इस गुफ्तगू में ज्यादा से ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलेमात से, आपकी सीरत से इस्तेफादा करना चाहते हैं अपने मौजू के हवाले से, और इससे हमें इमाम अलैहिस्सलाम की मारिफत और खुद इमामत की मारिफत में हमारे इंशाअल्लाह इजाफा होगा कि जब भी हम इमाम इमाम अली के बात करें, आपकी विलायत की बात करें, आइमा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करें, तो ये बात हमको हमेशा याद रहे कि इमामत की हकीकत क्या है। उस इमामत की हकीकत को सामने रखकर इमाम से मोहब्बत करें, न कि खाली लफ्जन सूरतन शक्लन। तो आपने ये खत लिखा था मदीने से निकलते हुए जनाबे मोहम्मद हनफिया। आप फरमाते हैं कि बेशक हुसैन इब्ने अली गवाही देता है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू, तौहीद और रिसालत की गवाही दी, जा बिल हक, और फिर रसूल खुदा की आप देखें क्या तारीफ बयान फरमा रहे। कई मकाम पर मकामात पर आपने रसूल को अपने जद के हवाले से पहचानवाया है, नाना के हवाले से बात की है, लेकिन इमामत में ये नाना और बाप और माँ वाली रिश्तेदारी नहीं होती है। रिसालत और नबुव्वत और इमामत की जो बाहमी रिश्तेदारी है, ये बेटे और माँ और बाप वाली रिश्तेदारी नहीं है। और वो इस खत में इन जुमलों में बयान हो रही है कि रसूल खुदा को बयान फरमा रहे हैं, वह जा बिल हक, कि रसूल हक के साथ आए, हक लेकर आए, मिन इंदिल हक, और हक की बारगाह से आए। ये एक जुमला किसका तारुफ फरमा रहे हैं? रसूल खुदा का तारुफ फरमा रहे कि वो कौन है जो हक लेकर हक की मईयत में और हक की बारगाह से आए। तो यहां से हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर जो इमाम करता है वो क्या है? हक का निफाज है। क्योंकि रिसालत और इमामत और नबुवत सिवाय हक के ना किसी चीज को देखती है और ना किसी और चीज में इंटरेस्टेड। वअन्नल जन्नत वन्नार हक्कुन, और फिर आपने आखिरत की गवाही दी, और फिर आप फरमाते हैं इन्नी लम अखरुज अशेरन वला बतेरन वला मुफसिदन वला जालिमन, यानी मैं जब निकला हूं तो ना माल जमा करने के लिए निकला हूं, ना अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए निकला हूं, ना फसाद बरपा करना मेरी नीयत है, ना किसी पर जुल्म करना। इनमें से कोई चीज मेरे इरादे और नीयत में शामिल नहीं है। वह इन्नमा खरज तो लितलबिल इस्लाह फी उम्मते जद्दी, लेकिन बेशक मैं इसलिए बाहर निकला हूं अपने वतन को छोड़कर कि मैं अपने जद की उम्मत में इस्लाह को तलब करूं। और यहां से हमें भी एक बहुत बहुत अहम सबक मिलता है। ये सब क्या है? ये इमाम अलैहिस्सलाम के अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के प्लान के शिकें हैं, ये पोस्टुलेट्स हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर कैसे होता है, किन बुनियादों पर होता है। अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर की पहली बुनियाद फकत और फकत हक का निफाज, अपनी मर्जी नहीं, अपनी चाहत नहीं, अपनी मनमानी नहीं। यानी इस बात को भी जिक्र आ गया तो मैं एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि इस बात को भी हमें अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी इस बात को मेक श्योर करना है कि दीन को हम वैसे कबूल करेंगे और दीन पर वैसे अमल करेंगे जैसा कि खुदा चाहता है, न कि दीन को हम उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे कि जैसा हमें अच्छा लगता है। ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि दीन के अंदर बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं कि जहां पर इंसान को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है, जिस तरीके से खुद करबला है कि ये एक ऐसा मौका आ गया था कि यहां फर्जंदे रसूल का साथ देना लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह चीज बन गई थी, उनकी पूरी दुनिया साफ हो रही थी जाहिरा, और आपने देख ही लिया कि ज्यादातर लोगों ने फिर किस रास्ते का इंतखाब किया कि वो मस्जिद भी जाते रहे, वो नमाजें भी पढ़ते रहे, वो हज भी करते रहे, लेकिन उन्होंने हुज्जते खुदा और इमाम बरहक को उनका साथ छोड़ दिया। तो इस बात को जहन में रखना है कि हक हक की बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर दीन कायम हो, सिर्फ और सिर्फ हक कंसिडरेशन हो दीन में, ना कि अपनी मर्जी, ना कि अपनी चाहत। तो और दूसरी बात क्या है कि हमेशा तलब इस्लाह, हमेशा माशरे में लोगों में हमेशा इस्लाह तलब करें, कभी भी वो काम ना हमसे होने पाए जिससे फसाद फैले, जिससे खराबी हो। तो मैं अपने जद की उम्मत में तलब इस्लाह के लिए निकला हूं, उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, इस बात का इरादा रखता हूं कि अमर बिल मारूफ करूं नहीं अज मुनकर करूं, व असीरा बसीरत जद्दी व सीरत अबी अली इब्न अबी तालिब, और मैं इस बात का इरादा रखता हूं कि अपने जद यानी रसूल खुदा और अपने वालिद यानी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को जिंदा करूं। तो इस एक खत में अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर के अरकान समझ में आ रहे हैं उनको कि ये काम कैसे करना है। प्योरली हक को मद्देनजर रखना है, उसके बाद जो भी अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर करे उसकी नीयत फकत और फकत इस्लाह हो, न के फसाद, न के झगड़ा, और ये बात भी मैं आपकी खिदमत में खास तौर से इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दीनी मवाके पर, दीनी मुआमलात में लोग इवन सही और गलत को बुनियाद बनाकर आपस में फसाद और झगड़े बर्पा करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और मुझे हर हाल में सही को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे उसके नतीजे में आपस में 10 ग्रुप्स बन जाए, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाए, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात खराब हो जाए। ये काम नहीं है, ये वाला अमल अंजाम नहीं देना है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मेरी नीयत यह है, मैं किस चीज को तलब करने के लिए निकला हूं, अपने जद की उम्मत में इस्लाह को तलब करने के लिए, हमेशा इस्लाह की तरफ हरकत हो। और मासूम की सीरत जिंदा हो, और किस काम के लिए कि रसूल खुदा की और इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरतों और सुन्नतों को जिंदा किया जाए। यहां भी एक बात का मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि सीरत और सुन्नत का जिंदा करना जिक्र करना नहीं है, सीरत और सुन्नत का जिंदा करने का मतलब क्या है कि जिन तौर तरीकों को, जिन अमाल को, और एक और जो बहुत अहम बात है कि जिसे हम तकरीबन हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, जिस माइंड सेट को, यानी नबुव्वत और रिसालत का एक माइंड सेट है, वो माइंड सेट क्या है, यानी एक तर्ज तफक्कुर है, सबसे पहले उस माइंड सेट को इंप्लीमेंट करना है, वरना आप किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे। वो माइंड सेट क्या है, उसकी बुनियाद दो तीन चीजों पर है, बस ये एक बात करके और मैं आज की हद तक बात खत्म करूं। नबुव्वत और रिसालत का माइंड सेट या उनका तर्ज तफक्कुर ये है कि जिंदगी में अहम तरीन सिफत अल्लाह का बंदा बनना है। जिस बात पर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना है, वो इस बात पर मेहनत करना है कि मैं अल्लाह का बंदा बन रहा हूं या नहीं बन रहा। और अल्लाह का बंदा बनने का मतलब क्या होता है कि इंसान अपने दिल में इस बात को देखे और जायजा ले कि जो कुछ भी खुदा ने चाहा है, उसके और मेरे दरमियान कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। खुदा ने चाहा है तुम सर्दियों में उठ जाओ, कोई तकलीफ तो नहीं होती ये काम करते हुए। खुदा ने चाहा है कि गर्मियों में अगर माहे रमजान आए तुम रोजे रखो, देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इसी तरीके से और बातें, यानी कि खुदा ने ये चाहा है कि मेरी जबान से कोई गलत जुमले ना निकले, खुदा ने ये चाहा है कि मेरी जबान से किसी मोमिन की आबरू रेजी ना हो, चाहे जितना भी गुस्सा है और जितना भी बुरा लगे, ये सब काम मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी बिल्ड हो रही है या नहीं हो रही। ये दीन का माइंड सेट है कि अपने आप को अल्लाह की मर्जी के आगे झुकाना, अल्लाह की मर्जी का ताबे होना, फरमाबरदार बनना, अब्दियत है। उसके बाद दूसरा दीन का माइंड सेट क्या है कि इंसान के अंदर अहमियत उसके अखलाक और किरदार की है, यानी कौन सा मोमिन वैल्यूएबल है, जैसे खुद ये रसूल खुदा के जुमले हैं, जिसका अखलाक बेहतर है, जिसका खुल्क बेहतर है। और अखलाक का मायना भी सिफात हसना है, अखलाक का माना खाली मुस्कुरा के बात करना नहीं है, अखलाक का माना यस और हेलो और ये सब करना नहीं है, बल्कि अखलाक का माना क्या है कि इंसान के अंदर सिफात हसना जो कुरान ने बयान की, यानी मिसाल के तौर पर कौन सी सिफत? अहद का पाबंद हो, ये सब कुरान के हैं। इंसान के अंदर शिर्क ना हो, इंसान अपने वालिदैन से हुस्ने सलूक करने वाला बने, इंसान इस ऐसा बने कि यतीम और बेआसरा लोग उसकी सरपरस्ती में अपने आप को महफूज ख्याल करें। ये वो तमाम के तमाम अखलाक के बुनियाद और नुकात हैं जो कुरान करीम ने हमें हमारे सामने, जो किताब खुदा ने हमारे सामने रखी। तो ये दीन का माइंडसेट है, अल्लाह की बंदगी को अहमियत हासिल है, अखलाक और किरदार की बुलंदी को हैसियत हासिल है, और यही वो चीज है कि जो नाफिज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इमाम कयाम करते हैं और हरकत में आते हैं। और इसका नाम ये इमाम की जानिब से क्या है? ये उनका अमर बिल मारूफ व नहीं अज मुनकर। और इसी बात को अपने जहन में रखिएगा कि इंशाल्लाह जब भी इमाम जमान अलैहिस्सलाम जुहूर फरमाएंगे तो इमाम जमान अलैहिस्सलाम का जो अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर होगा वो इन्हीं बुनियादों पर होगा कि जो हमें कुरान और अहले बैत से नजर आ रही हैं। और इस बात का भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंपलसरी है, ना कि ऑप्शन और चॉइस। ठीक है, ये जुमला हो सकता है डराने वाला हो थोड़ा सा, लेकिन ऐन हक है ये जुमला कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर की जो आउटपुट है, जो दीन हमको कह रहा है कि इसका ये नतीजा निकलना चाहिए, इस जगह पर आना हमारे लिए चॉइस या ऑप्शन नहीं है कि हम कहें कि नहीं, हम अल्लाह की बंदगी के हवाले से कोताही करें, हम अपने अखलाक और किरदार को बिल्ड करने में सुस्ती करें, उस तरफ तवज्जो ना करें, तो उसके बहुत संगीन नताएज भुगतने पड़ेंगे। ये चॉइस नहीं है, यानी कि ये बहरहाल हो सकता है कि मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं, लेकिन इस बारे में कुरान और दीन बहुत क्लियर है। और इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि कितने तरीकों से ये बात साबित है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस बात में ढील का मुजाहरा करें या कोताही का मुजाहरा करें और हम ये सोचें कि नहीं भाई चलो ये तो ऐसे भी चल रहा है वैसे भी चल रहा है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। बल्कि बहुत सारी खराबियां ऑलरेडी हम देख चुके हैं और बहुत दूसरी खराबियां देखनी पड़ जाएंगी नऊज़ु बिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक, जैसा कि जाहिर है कि वक्त की एक कैद है, तो उसके मुनासिबत से एक हद तक मैंने आज आपके सामने इसके कुछ नुकात सामने रखे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घर जाकर ये छोटा सा जो खत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि जो आपने जनाबे मोहम्मद हनफिया के नाम लिखा था, आप लोग भी इसको जाके पढ़िएगा, इसको स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि जो मैंने तीन चार बातें इसमें से खास तौर से सिंगल आउट करके आपके सामने बयान की हैं, उन बातों को आप किस हद तक समझ पाते हैं और किस हद तक आप उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन है अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर का, उससे रिलेट कर पाते हैं। और फिर अब ऑब्वियसली कमिंग टू आवर लाइव्स, हम जैसा मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मदीने से रुखसत का जिक्र किया, तो आज पहली मुहर्रम के हवाले से जाहिर है कि पहली मुहर्रम को तो इमाम अलैहिस्सलाम का काफिला उस मंजिल से करीब हो रहा था कि जो मंजिल नैनवा या दश्ते कर्बोबला कहलाती है, लेकिन हम तारीखों की मुनासिबत से जैसा कि जिक्र होता है, तो आज हम कुछ एक दो वाकयात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मदीने से रुखसत के हवाले से बयान करें। और ये बात आपके इल्म में है कि जब यजीद की तरफ से वाली मदीना वलीद बिन अतबा के नाम खत आया था कि हुसैन इब्न अली से बैत लो, और अगर वो आसानी से बैत करने पर आमादा ना हो तो जिस हद तक सख्ती मुमकिन हो करो, यहाँ तक कि कत्ल तक भी जा सकते हो। लेकिन वलीद ने इस बात को दिल से कबूल नहीं किया, और बहरहाल वो बिल्कुल भी आमादा नहीं था इस चीज पर कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। शायद हमारे इल्म में ये बात नहीं है कि जब यजीद का खत मदीने में आया है, उसके 2 या 3 दिन बाद ही इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं है कि ये चीज काफी, यानी पहली रात उसने बुलाया था, आप बनी हाशिम के जवानों के साथ गए, एक हॉट डिबेट हुआ, सख्त गुफ्तगू हुई, जिसमें आपने सख्ती से और वाजे अल्फाज में बैत को कबूल करने से इनकार कर दिया। वहां पर मरवान भी मौजूद था। मरवान की फरमाइश ये थी कि हुसैन को बैत लिए बगैर ना जाने दिया जाए, लेकिन वलीद बिन अतबा की हिम्मत नहीं पड़ी इमाम हुसैन को रोकने की, और जाहिर है कि वो मदीना था और वहां बनी हाशिम के जवान भी मौजूद थे। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन ही इस बात की मनसूबाबंदी कर ली कि अब मदीने में हम नहीं रहेंगे, और आपकी जो पहली मंजिल थी वो थी मक्का। और ये बात भी जहन में रहे कि कूफियों के खतूत और वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो ज्यादातर मक्के में आई हैं, न कि मदीने। तो ये पूरा जो एक वक्त के लिहाज से तरतीब है वाकयात की, वो अपने जहन में रखिएगा। जब ये खत आया है यजीद का, तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा की कब्र पे तशरीफ ले गए पहली रात, और वहां पे जाके आप फरमाते हैं, रसूल खुदा से हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और जो तारीख में लिखा है वो बहुत अजीब जुमला लिखा है कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अना हुसैन इब्ने फातिमा, के ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो और मैं हुसैन इब्ने फातिमा आपके पास आया और आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आपने मुझे अपनी उम्मत में बतौर खलीफा छोड़ा था, आपने हुक्म खुदा के मुताबिक हमको इमाम बनाकर उम्मत के दरमियान रखा था, लेकिन ऐ पैगंबरे खुदा अब आप इस बात पर गवाह रहिए कि इस उम्मत ने मुझे तन्हा कर दिया है। और ये जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत अजीब जुमला है कि अभी आप मदीने में, अभी जाहिरन असहाबे पैगंबर और ताबेईन और न मालूम कौन कौन से लोग आपके इर्द गिर्द, लेकिन आप रसूल खुदा की कब्र मुबारक पे जाके ये इरशाद फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे तन्हा कर दिया और ये मेरी आपसे शिकायत है, मैं इस शिकवे के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और उम्मीद करता हूं कि जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। और ये गुफ्तगू आपने की मुख्तसर सी, और उसके बाद आपने वहां पर नमाज में और इबादत में मशगूल हो गए। और आपको ये बात पता है कि रसूल खुदा की कब्र मुबारक जो है वो मस्जिद नबवी के साथ है, बल्कि मस्जिद में एक लिहाज से अंदर ही। तो इमाम अलैहिस्सलाम पूरी रात वहां पर इबादत में मशगूल रहे। उसके बाद जब सुबह हुई तो आप अपने घर तशरीफ लाए, और उस आने वाली रात को दोबारा रसूल खुदा की कब्र पे आए। चंद रकत नमाज आपने अदा की, और जब नमाज से फारिग हुए तो फिर आपने अब रसूल से नहीं खिताब किया, अब आपने खुदा की बारगाह में हाथ बुलंद किए और इन अल्फाज में दुआ की कि ए खुदाया, ए मेरे रब, ये तेरे पैगंबर मोहम्मद की कब्र और मैं तेरे पैगंबर की बेटी का फर्जंद हूं, और ए मेरे रब, तू इस बात का इल्म रखता है कि मैं मारूफ को दोस्त रखता हूँ, मारूफ से मोहब्बत करता हूँ और मुनकर को दुश्मन जानता हूँ। मुनकरात मेरे दुश्मन हैं, मारूफ मेरे महबूब हैं। ए जलजलाल वल इकराम, मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस हस्ती के हक का वास्ता देकर जो इस कब्र में है, कि जो कुछ भी मेरे सामने आने वाला है, मुझे हमेशा उस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाना कि जिसमें तेरी और तेरे रसूल की रजा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्र रसूल पर दुआ की। इमाम अलैहिस्सलाम इस हालत में दुआ करते करते बहुत शिद्दत में, अब हम समझ सकते हैं इस बात को कि इमाम की हालत और आपके जज्बात क्या होंगे जब आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमले अदा हो रहे होंगे। तो आप शदीद गिरिए में मशगूल हुए, यानी बहुत ज्यादा आंसू आपके आंखों से बह रहे थे, और उसी हालत में आप एक लिहाज से नींद की हालत में चले गए। तो आपने देखा रसूल खुदा को कि रसूल खुदा कुछ फरिश्तों के साथ, फरिश्तों की हमराही में आपके पास आए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि वहां जमीन पर थे, आप उनको उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, दोनों आंखों के दरमियान बोसा देते हैं और कहते हैं, ए मेरे हबीब हुसैन, गोया कि मैं देखता हूं कि तुम अनकरीब अपने खून में, तुम अपने खून में लथपथ हो, तुम कत्ल किए जाओगे एक ऐसी उस जमीन में कि जो जमीन है कर्बोबला है, और तुम्हें कत्ल करने वाले मेरी उम्मत में से एक गुरोह होगा कि जो तुझे कत्ल करने के साथ साथ मेरी शफाअत के भी उम्मीदवार होंगे, जो बखुदा उनको कभी नसीब ना हो। ए हुसैन, तुम इस हालत में कत्ल किए जाओगे कि तुम भूख और प्यास की शिद्दत में मुब्तला होगे। ए मेरे हबीब हुसैन, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे भाई मेरे पास आ चुके हैं और वो तुम्हारे लिए भी इस बात के उम्मीदवार हैं कि तुम भी उस बहिश्ते जावेदानी में तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। ए हुसैन, खुदा ने तुम्हारे लिए एक ऐसा मकाम रखा है बहिश्त में जो किसी के लिए नहीं, और उस मकाम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि तुम इस राह शहादत और इस राह सख्ती से गुजरो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस हालत में अपने जद्दे बुजुर्गवार की तरफ निगाह करते हैं और कहते हैं कि ए नाना जान, मुझे अब इस दुनिया की हाजत रही ना इस जिंदगी की हाजत रही, आप मुझे इसी वक्त अपने पास बुला लें। रसूल खुदा फरमाते हैं जवाब में कि ना हुसैन, तुम्हें दुनिया की तरफ वापस लौटना होगा, तुम्हें शहादत की इस राह से गुजरना होगा, और जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए लिखा है और जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है उसमें यह भी है कि हरम रसूल अल्लाह बेपर्दा हो, तुम्हारे अस्हाब व अंसार व आवान और तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे सामने खाक व खून में गलता हो, और इस हालत में तुम अपने आयजा और अकरबा और अपने पिदरे बुजुर्गवार और बरादरे अजीज के पास जाओ कयामत में, ताकि तुम उस बहिश्त के बुलंद तरीन दर्जे को हासिल कर सको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूल खुदा की तरफ से दी जाने वाली बशारत बस थी। आप वापस आते हैं और शायद ये बात हम कम बयान करते हैं कि उसी रात को, रात की तारीकी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हरम को लेकर मदीने से रवाना हुए हैं। और उसमें जो सबसे अजीब बात है वो जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा का साथ होना। इन्हें जाहिरन ये बात समझ में नहीं आती है बीवी जैनब, क्योंकि आप अपने घर में थी, आप शौहरदार थी, आपकी औलाद थी, आपका अपना एक खानवादा था। लेकिन किस तरीके से कि इन 2 दिनों में बीवी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो इजाजत भी ली, वो अजम भी किया कि अपने घर को छोड़कर, अपनी हर चीज को छोड़कर अपने भाई हुसैन के साथ इस सफर पर रवाना हुई। और ये भी एक इंतजाम इलाही था कि करबला, जिस तरीके से कि अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में कहा है कि गरीबो सादा ओ रंगी है दास्तान हरम, इंतहा है हुसैन और इब्तदा है इस्माइल, इसी तरीके से करबला की राह की इब्तदा हुसैन अलैहिस्सलाम है और इंतहा जैनब सलामुल्लाह अलैहा है। तो अब अमारियां सजना शुरू हुई, बीबियां सवार होना शुरू हुई, लेकिन अब वो हाल है कि शायद किसी बीबी के वहमो गुमान में भी ना हो कि कुछ महीनों के बाद यही अमारियां होंगी कि जिन पर सवार दोबारा मदीने में दाखिला होगा। लेकिन उस वक्त ना हुसैन साथ होंगे, ना अब्बास, ना अली अकबर, बल्कि वो काफिला जो अपने हर शहीद को मैदान करबला में खो कर आ चुका होगा, और वाह हुसैना और वाह अलिया की सदाएं बुलंद हो। सयालमुल्लज़ीना परवरदिगार आलमीन हमारी इस फकीर सी कोशिश व काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं।
आमीन।
जो भी मजलिस की बुनियाद रखने वाले हैं उन तमाम मोमिनीन की नियतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक जरिया सवाब ना हो बल्कि एक राह तरबियत भी हो। इसके वसीले से हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा खुदा से तकर्रुब, इन तमाम चीज़ों में बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आए इंशाअल्लाह। मैं अपने लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदा हमारी और आपकी दुनिया में भी बरकत दे, हमारी आखिरत में भी बरकत दे, और हमें दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम तले जिंदा रखे और आखिरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफाअत से बहरमंद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
अल्लाहुम्मा।